एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो हर उस इंसान के लिए बहुत काम की है जो बच्चों के साथ रहता है या काम करता है।
हाँ, मतलब माता पिता हो, टीचर्स हो, कोई भी।
बिल्कुल, ये किताब है संवाद के बारे में, बच्चों से कैसे बात करें और शायद उससे भी जरूरी उनकी कैसे सुने।
आपने बिल्कुल सही कहा। किताब का नाम है हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन एंड लिसन सो किड्स विल टॉक। लिखने वाली है एडल फेबर और एलन माजलिश।
और इसका जो दिल है ना, वो बहुत सीधा सा है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। ये कि बच्चों के साथ सम्मान और सहानुभूति, इसी से मजबूत रिश्ते बनते हैं।
और आजकल की भागदौड़ में तो ये और भी जरूरी हो गया। नहीं, अक्सर हम बच्चों की बातों को अनसुना कर देते
या
हैं
फिर बस डांट डपट कर काम चलाना चाहते हैं।
हाँ, तो ऐसे में ये किताब एक ताजी हवा के झोंके जैसी है।
सही कहा, हम अक्सर देखते हैं ना परिवारों में संवाद की कमी,
बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पर झगड़े,
और फिर वो निराशा सी आ जाती है। लगता है जैसे बच्चे सुनते नहीं
और हम शायद उन्हें समझते नहीं।
बिल्कुल, तो ये किताब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करती है, ये असल में काम आने वाले तरीके सिखाती है।
हाँ, प्रैक्टिकल तरीके, ऐसी भाषा, ऐसे स्किल्स जो रोजमर्रा की जो चुनौतियां हैं ना,
सुबह स्कूल के लिए तैयार करवाना,
हाँ, या होमवर्क करवाना, उनको आपसी समझ और सम्मान के पलों में बदल सकें। ये कंट्रोल के बारे में नहीं है।
नहीं, ये कनेक्शन बनाने के बारे में है, जुड़ाव।
अच्छा, और जिन्होंने हमें ये हुनर सिखाया, मतलब एडेल फेबर और एलन माजलिश, आप कह रहे थे कि वो पारंपरिक मनोवैज्ञानिक नहीं थीं।
हाँ, ये दिलचस्प बात है, वो कोई एकेडमिक साइकोलॉजिस्ट नहीं थीं, वो अमेरिकी लेखिकाएं थीं और पेरेंटिंग एजुकेटर।
ओह,
और उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली बच्चों के साथ संवाद के काम के लिए। उनकी असली ताकत किताबी ज्ञान से ज्यादा उनके अनुभव में थी।
अच्छा, मतलब उन्होंने सिर्फ थ्योरी पे बात नहीं की।
नहीं, बिल्कुल नहीं, उनकी जो एक्सपर्टीज थी उसका आधार थे एक मशहूर बाल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हाइम गिनॉट।
हाँ, उनका नाम सुना है।
वे उनकी शिष्या थी और उन्होंने डॉक्टर गिनॉट के जो सिद्धांत थे ना, सम्मान और सहानुभूति वाले, उनको पकड़ा और हम जैसे आम माता पिता के लिए आसान बना दिया, रोजमर्रा में इस्तेमाल करने लायक तकनीकों में बदल दिया।
वाह, मतलब मुश्किल साइकोलॉजी को प्रैक्टिकल बना दिया।
बिल्कुल, और उनकी बात पर यकीन इसलिए भी होता है क्योंकि उन्होंने 10 साल से ज्यादा पेरेंटिंग वर्कशॉप्स चलाई।
ओ, 10 साल?
हाँ, तो ये किताब सीधे उन वर्कशॉप से निकली है, हजारों माता पिता के साथ काम किया, उनकी असल जिंदगी की दिक्कतें सुनी।
तो ये सब टेस्टेड तरीके हैं।
हाँ, उनके साथ मिलकर ये स्किल्स डेवलप किए। वो खुद को कोई एक्सपर्ट नहीं मानती बल्कि साथ ही पेरेंट की तरह देखती है।
जिन्होंने खुद संघर्ष किया,
सीखा और फिर अपने अनुभव घंटे, शायद इसीलिए उनकी बातें इतनी सच्ची लगती हैं, असरदार।
तो अगर कोई पूछे कि ये किताब असल में है क्या, तो क्या कहेंगे?
मैं कहूंगा कि ये परिवार में बातचीत का तरीका बदलने वाली एक प्रैक्टिकल गाइड है।
प्रैक्टिकल गाइड?
हाँ, इसका मकसद है माता पिता, टीचर्स या बच्चों से जुड़े किसी भी व्यक्ति को ठोस सम्मानजनक होमवाद के तरीके सिखाना।
ये उन लोगों के लिए है जो शायद थक चुके हैं चीखने चिल्लाने से, धमकाने से,
सजा देने के पुराने तरीकों से।
हाँ,
और जो बच्चों से जुड़ने के, उनके व्यवहार को सही दिशा देने के ज्यादा शांत और असरदार तरीके ढूंढ रहे हैं।
जुड़ने के तरीके, ये महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल, और किताब का मूल विचार ये है कि बच्चे जानबूझकर शैतान या जिद्दी नहीं होते।
अच्छा।
हाँ, अक्सर जो उनका बुरा बर्ताव हमें लगता है ना, वो असल में हमारे बात करने के तरीके की प्रतिक्रिया होता है।
मतलब हमारी गलती?
गलती नहीं कहूंगा, पर शायद अनजाने में हम ऐसा कुछ कहते हैं जिससे उन्हें लगता है कि उन्हें सुना नहीं जा रहा, या उनकी बेइज्जती हो रही है, या उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। तो तर्क यह है कि अगर हम यानी बड़े अपने बात करने और सुनने का तरीका बदलें,
तो माहौल बदल सकता है।
हाँ, ऐसा माहौल बन सकता है जहाँ बच्चे खुद सहयोग करने के लिए ज्यादा तैयार हों, सक्षम हों।
तो ये बच्चों को बदलने से ज्यादा खुद को बदलने के बारे में है।
बिल्कुल सही।
और किताब ये बदलाव लाती कैसे है, मतलब क्या है उसमें?
ये पाठकों को एक तरह की यात्रा पर ले जाती है, आत्मखोज और कौशल सीखने की। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं।
अच्छा।
असल बातचीत के उदाहरण हैं और कमाल के कार्टून चित्र हैं।
हाँ, मैंने सुना है कार्टून्स के बारे में, वो क्या दिखाते हैं?
वो दिखाते हैं कि कैसे हम अनजाने में भले ही नेक इरादे से ऐसी बातें कह जाते हैं जो झगड़ा बढ़ा देती हैं,
या बच्चे के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती हैं।
हाँ, वो कार्टून्स एक नजर में दिखा देते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, बहुत असरदार है।
फिर किताब आगे कैसे बढ़ती है?
फिर किताब बहुत व्यवस्थित तरीके से एक एक करके नए कौशल सिखाती है जैसे बच्चों की नेगेटिव भावनाएं, गुस्सा, निराशा, डर, इनको कैसे संभालें?
ये तो बहुत जरूरी है।
बिना मांगे या धमकाएं उनका सहयोग कैसे पाएं? सजा देने के बजाय अनुशासन के रचनात्मक तरीके क्या हैं?
जो जिम्मेदारी सिखाते हो?
बिल्कुल। और बच्चों में आजादी और आत्मनिर्भरता को कैसे बढ़ावा दें? हर अध्याय एक आम समस्या उठाता है, पुराने तरीके के नुकसान दिखाता है, नए कौशल सिखाता है और फिर ढेर सारे उदाहरण और अभ्यास देता है।
ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। किताब की शुरुआत कैसे होती है?
शुरुआत में लेखिकाएं अपने निजी अनुभव बताती हैं, जब वे युवा माँ थीं और बच्चों की परवरिश में खुद को बहुत निराश पाती थीं।
अच्छा, तो वो अपनी कहानी से शुरू करती हैं।
हाँ, और बताती हैं कि कैसे डॉक्टर गिनॉट की वर्कशॉप ने उनकी जिंदगी बदल दी। ये ईमानदारी पाठक को तुरंत जोड़ लेती है।
बिल्कुल। तो पहला अध्याय किस बारे में है?
पहला और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है बच्चों की भावनाओं को समझने और संभालने में मदद करना। ये पूरी किताब की नींव है, समझिए।
नींव
क्यों? तर्क ये है कि जब तक बच्चे की भावनाएं, चाहे वो गुस्सा हो, दुख हो या डर, स्वीकार नहीं की जाती, तब तक वो तर्क सुनने या सही व्यवहार करने की स्थिति में होता ही नहीं है।
ओ, मतलब पहले भावना फिर तर्क।
बिल्कुल। भावनाओं को नकारना, जैसे इसमें रोने की क्या बात है, या सजा देना, चुप हो जाओ, ये असल में बात को और बिगाड़ देता है।
ये बात तो बहुत गहरी है। हम अक्सर सीधे समाधान पे कूद जाते हैं या बच्चे को चुप कराने लगते हैं।
हाँ, बिना ये समझे कि वो महसूस क्या कर रहा है।
तो किताब इसके लिए क्या तरीका सुझाती है? क्या सिर्फ हाँ हाँ कहना काफी है?
नहीं, सिर्फ हाँ हाँ नहीं, चार मुख्य बातें हैं। पहला, पूरे ध्यान से सुने।
मतलब सच में सुने?
हाँ, बिना टोका टाकी, बिना सलाह दिए। दूसरा, उनकी भावना को एक शब्द से स्वीकार करें, जैसे ओहो, अच्छा। तीसरा, भावना को नाम दें। लगता है तुम बहुत निराश हो या तुम सच में गुस्से में लग रहे हो, ये बच्चे को अपनी भावना पहचानने में मदद करता है।
ओके, और चौथा?
चौथा, जो मुझे बहुत पसंद आया, उनकी इच्छा को कल्पना में पूरा करें।
कल्पना में?
कैसे? जैसे अगर बच्चा किसी महंगी चीज के लिए जिद कर रहा है तो कहें, काश मैं तुम्हें यह दिला पाता, काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं तुम्हें ऐसी 10 चीजें दिला देता।
अरे वाह,
ये उसकी इच्छा को स्वीकार करता है, भले ही आप उसे पूरा ना कर सकें, उसकी भावना को मान्यता देता है।
ये तो कमाल का आइडिया है। ये दिखाता है कि आप बच्चे की चाहत को समझ रहे हैं। तो एक बार जब हमने भावनाओं को संभाल लिया तो अगला कदम क्या है? रोजमर्रा के काम करवाना?
हाँ बिल्कुल, वो भी तो बड़ी चुनौती है। कमरा साफ करना, समय पर स्कूल जाना। यही आता है दूसरा अध्याय, सहयोग प्राप्त करना। यहाँ भी वही सिद्धांत है, आदेश, धमकी या लंबे भाषण नहीं।
तो फिर क्या?
ऐसे तरीके अपनाएं जो सहयोग को आमंत्रित करें। किताब कई विकल्प देती है, लेकिन दो सबसे असरदार हैं। पहला, समस्या का वर्णन करें।
समस्या का वर्णन, उदाहरण?
जैसे, बेटा गीला तौलिया बिस्तर पर पड़ा है, बस इतना ही, बजाय इसके कि तुम हमेशा अपना तौलिया बिस्तर पर फेंक देते हो।
अच्छा, सीधा आरोप नहीं?
नहीं, इससे बच्चे को खुद सोचने का मौका मिलता है कि क्या करना है।
और दूसरा तरीका?
दूसरा है मैं कथनों का प्रयोग करना, आई स्टेटमेंट्स।
मैं कथन?
हाँ, यानी अपनी भावना बताना बिना दूसरे पर दोष मढ़े। जैसे, जब चाबियां अपनी जगह पर नहीं मिलती तो मुझे चिंता होती है कि कहीं हम देर ना हो जाएं।
बजाय इसके कि तुमने फिर चाबियां कहीं रख दी।
बिल्कुल, ये तरीका सामने वाले को डिफेंसिव नहीं बनाता, आपकी बात भी पहुंच जाती है और सम्मान भी बना रहता है, सहयोग की भावना जगती है।
ये मैं कथन तो रिश्तों में कहीं भी काम आ सकते हैं, पति पत्नी के बीच, ऑफिस में।
यकीनन, ये यूनिवर्सल सिद्धांत है।
लेकिन मान लीजिए इन सब तरीकों के बाद भी बच्चा बात ना माने या गलत व्यवहार करे, क्या तब सजा जरूरी हो जाती है? हम में से ज्यादातर तो यही मानते हैं।
ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और किताब का तीसरा अध्याय सजा के विकल्पों पर इसी धारणा को चुनौती देता है।
चुनौती देता है? मतलब सजा गलत है?
किताब कहती है सजा अप्रभावी है, इनइफेक्टिव,
क्योंकि बच्चे का ध्यान उसकी गलती से हटाकर आपके प्रति गुस्से, बदले की भावना और डर पर ले जाती है।
वो ये नहीं सोचता कि मैंने गलत किया। हाँ, वो सोचता है पकड़ा गया या ये नाइंसाफी है। अनुशासन का असली मकसद तो सिखाना है, चोट पहुंचाना नहीं।
तो फिर विकल्प क्या है? बिना सजा के बच्चे सीखेंगे कैसे? ये सवाल तो मन में आता है।
किताब 7 विकल्प देती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है समस्या समाधान पर जोर देना,
प्रॉब्लम सॉल्विंग।
हाँ, बच्चे को उसकी गलती का एहसास कराना और फिर मिलकर सोचना कि इसे ठीक कैसे किया जाए या आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं।
जैसे?
मान लीजिए बच्चे ने दीवार पर रंग चला दिया, तो डांटने या सजा देने के बजाय कहें, अरे दीवार गंदी हो गई, इसे साफ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फिर उसे सफाई में शामिल करें।
ओह, जिम्मेदारी देना।
हाँ, या फिर प्राकृतिक परिणामों का अनुभव करने दें, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, जब तक सुरक्षित हो।
जैसे अगर वो रोज अपना टिफिन भूल जाता है
तो शायद एक दिन उसे बिना लंच के रहना पड़े। बेशक उम्र और स्थिति देखकर ये उसे सिखाएगा सजा से बेहतर।
ये वाकई सोच बदलने वाली बात है, सजा देने वाले से समस्या सुलझाने वाले साथी बनना। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा अध्याय है स्वायत्तता को प्रोत्साहित करना, ऑटोनॉमी।
हाँ, बच्चों में आजादी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
ये क्यों जरूरी है?
क्योंकि हमारा लक्ष्य बच्चों को हमेशा अपने सहारे रखना नहीं है ना, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना है।
हाँ, ये तो है।
उन्हें स्वतंत्र सक्षम इंसान बनाना है, जो अपने फैसले खुद ले सकें, अपनी समस्याएं हल कर सकें।
तो इसके लिए किताब क्या कहती है?
इसके लिए किताब कहती है कि बच्चों को चुनाव करने दें, छोटे मोटे मामलों में।
जैसे?
लाल शर्ट पहनोगे या नीली, और उनके संघर्ष का सम्मान करें। मतलब अगर वो किसी चीज में जूझ रहे हैं तो फौरन मदद करने के बजाय कहें, हाँ ये बटन लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ताकि वो खुद कोशिश करें।
उन्हें बचाने या कंट्रोल करने के बजाय उन्हें सक्षम बनने में मदद करना। ओके, अब पांचवां अध्याय है प्रशंसा पर, प्रेज। ये तो आसान लगता है, बच्चों की तारीफ करना, इसमें क्या मुश्किल है?
ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। किताब पारंपरिक मूल्यांकनात्मक प्रशंसा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम कितने स्मार्ट हो, और वर्णनात्मक प्रशंसा, डिस्क्रिप्टिव प्रेज में फर्क बताती है।
मूल्यांकनात्मक और वर्णनात्मक क्या फर्क है?
मूल्यांकनात्मक प्रशंसा बच्चे को चिंता में डाल सकती है, क्या मैं हमेशा इतना अच्छा रह पाऊंगा, या उसे बाहरी मंजूरी पर निर्भर बना सकती है।
अच्छा।
जबकि वर्णनात्मक प्रशंसा में आप सिर्फ बताते हैं कि आपने क्या देखा या महसूस किया।
कोई उदाहरण देंगे? ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है समझना।
जरूर, मान लीजिए बच्चे ने अपना कमरा साफ किया है, मूल्यांकनात्मक प्रशंसा होगी, वाह तुम कितने अच्छे बच्चे हो।
हाँ, हम अक्सर यही कहते हैं।
वर्णनात्मक प्रशंसा होगी, अरे वाह मैं देख रहा हूँ कि फर्श साफ है, सारी किताबें शेल्फ पर सजी हैं, और बिस्तर भी बना हुआ है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
ओह, मतलब उसके काम का ब्यौरा देना।
हाँ, या फिर आप उसके प्रयास को एक शब्द में समेट सकते हैं, तुमने पूरे कमरे को खुद साफ किया। इसे कहते हैं जिम्मेदारी। ये बच्चे को अपनी काबिलियत पर ध्यान देने में मदद करता है, ना कि सिर्फ आपकी राय पर।
समझ गए, यानी बच्चे के काम या व्यवहार का वर्णन करना, न कि बच्चे का मूल्यांकन करना, ये वाकई शक्तिशाली है। और आखिरी छठा अध्याय, बच्चों को भूमिकाएं निभाने से मुक्त करना, फ्रीइंग चिल्ड्रन फ्रॉम प्लेइंग रोल्स। इसका क्या मतलब है?
अक्सर हम अनजाने में बच्चों पर लेबल लगा देते हैं, ये तो बहुत शर्मीला है, ये बड़ा शरारती है, ये तो है ही भुलक्कड़।
हाँ, लगा देते हैं,
और बच्चे धीरे धीरे इन भूमिकाओं को ही जीने लगते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम बच्चों को इन सीमित दायरों से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं।
कैसे?
एक तरीका है बच्चे को खुद की एक नई तस्वीर दिखाना। जैसे अगर शर्मीले बच्चे ने किसी मेहमान से थोड़ी बात की, तो बाद में कहें, मैंने देखा तुमने अंकल से उनके कुत्ते के बारे में पूछा, ये तो बहुत दोस्ताना अंदाज था।
अच्छा, पॉजिटिव चीज को हाईलाइट करना।
हाँ, या उन्हें उनकी पिछली सफलताएं याद दिलाना, जब उन्होंने किसी मुश्किल काम को कर दिखाया था, उन्हें याद दिलाना कि वो उस लेवल से कहीं ज्यादा हैं।
कमाल है। तो ये छह अध्याय हमें संवाद के अलग अलग पहलुओं पर गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर हम इन सब बातों का निचोड़ निकालें, तो कुछ मुख्य संदेश क्या होंगे? What are the key takeaways?
मेरे ख्याल से सबसे पहला और बुनियादी संदेश है, भावनाओं को प्राथमिकता दें। प्रायोरिटाइज फीलिंग्स।
सबसे पहले भावनाएं।
हाँ, किसी भी तर्क, सलाह या समाधान से पहले बच्चे की भावना को सुनना, समझना और स्वीकार करना जरूरी है। जब बच्चे भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी वे सीखने या सहयोग करने के लिए तैयार होते हैं।
बिल्कुल। दूसरा?
दूसरा, सम्मान दो तरफा रास्ता है, रिस्पेक्ट इज अ टू वे स्ट्रीट। हमें बच्चों से उसी शिष्टाचार और सम्मान से बात करनी चाहिए जैसा हम किसी बड़े दोस्त या साथी से उम्मीद करते हैं। चिल्लाना, बेइज्जती करना, उनकी बातों को काटना, ये सब सम्मान के दायरे से बाहर है।
सही बात है।
तीसरा संदेश।
तीसरा, जबरदस्ती नहीं सहयोग मांगे।
इनवाइट कोऑपरेशन, डोंट फोर्स इट।
सहयोग आमंत्रित करें।
हाँ, हमारा लक्ष्य बच्चे से काम करवाना नहीं, बल्कि काम में उसका सहयोग आमंत्रित करना है। जबरदस्ती या कंट्रोल से गुस्सा और प्रतिरोध बढ़ता है, सहयोग बच्चे की गरिमा बनाए रखता है और रिश्ते को मजबूत करता है।
चौथा,
सजा नहीं समाधान ढूंढे। फोकस ऑन सॉल्यूशंस, नॉट पनिशमेंट। अनुशासन का मतलब सजा देना नहीं, सिखाना है। गलती होने पर डांटने या सजा देने के बजाय मिलकर ये सोचना कि अब क्या किया जा सकता है और आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या सीख सकते हैं, ये जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है।
और कोई मुख्य संदेश?
हाँ, पांचवां जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, पेरेंटिंग एक सीखा हुआ कौशल है, कोई जन्मजात गुण नहीं। पेरेंटिंग इज अ लर्न्ड स्किल, नॉट एन इंस्टिंक्ट।
अच्छा, ये तो बहुत राहत की बात है,
है ना? अगर हम संघर्ष कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे माता पिता हैं। इसका मतलब है कि हमें नए तरीके सीखने की जरूरत है और ये किताब वही तरीके सिखाती है। ये बहुत उम्मीद बंधाने वाली बात है।
ये सारे संदेश बहुत शक्तिशाली हैं। किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार भी हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं, कुछ खास बातें जो हमें याद रखनी चाहिए?
हाँ, कुछ विचार वाकई बार बार याद आते हैं। पहला तो वही भावना वाला, जब बच्चे सही महसूस करते हैं तभी वे सही व्यवहार करते हैं। उन्हें सही महसूस कराने में कैसे मदद करें, उनकी भावनाओं को स्वीकार करके।
व्यवहार भावना से जुड़ा है।
बिल्कुल, पहले भावना से जुड़े।
दूसरा
वो तुम बनाम मैं वाली बात। दोष देने वाले तुम कथनों, तुम हमेशा ऐसा करते हो के बजाय मैं कथनों, जब ऐसा होता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है।
हाँ, ये रिश्ते को बचाता है, प्रॉब्लम पे फोकस रखता है, इंसान पर नहीं।
सही का। और तीसरा प्रशंसा वाला, वर्णन करें, मूल्यांकन न करें। जब आप सिर्फ बताते हैं कि बच्चे ने क्या किया है तो आप उसे खुद अपनी काबिलियत पहचानने का मौका देते हैं।
ये अंदरूनी आत्मविश्वास बढ़ाता है, बाहरी तारीफ पर निर्भरता कम करता है।
बिल्कुल, ये असली टिकाऊ आत्मसम्मान बनाता है।
ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इन्हें लागू करना, रोजमर्रा की भागदौड़ में, क्या ये मुश्किल नहीं है?
ये एक वाजिब सवाल है। शुरुआत में थोड़ा अभ्यास और सब्र चाहिए होता है, ये सच है।
हाँ,
लेकिन किताब बहुत व्यवहारिक उदाहरण देती है, जैसे सुबह स्कूल जाने की किटकिट। रोज टोकने के बजाय
क्या करें?
आप समस्या का वर्णन कर सकते हैं, 8 बज गए हैं, स्कूल बस 15:30 पर आती है, या एक शब्द में याद दिला सकते हैं, जूते, या दरवाजे पर एक चेकलिस्ट लगा सकते हैं, छोटे छोटे बदलाव।
अच्छा, और अगर बच्चा दुकान में किसी चीज के लिए रो रो कर आसमान सिर पर उठा ले, वो जिसे टैंट्रम कहते हैं,
वहाँ भी वही सिद्धांत, उसे चुप कराने या डांटने के बजाय पहले भावना को नाम दे।
लगता है तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है।
हाँ, और तुम निराश हो, फिर कल्पना में इच्छा पूरी करें, काश मैं तुम्हें ये दिला पाता, काश हमारे पास एक जादू की छड़ी होती।
हाँ,
अक्सर सिर्फ भावना को समझने भर से बच्चे का गुस्सा कम हो जाता है, उसके बाद आप शांति से नियम समझा सकते हैं।
भाई बहन के झगड़ों में भी ये काम आ सकता है, जहां अक्सर हम जज बन जाते हैं।
बिल्कुल, जज बनने किसने शुरू किया के बजाय दोनों की भावनाओं को स्वीकार करें।
तुम गुस्से में हो क्योंकि,
और
तुम निराश हो क्योंकि,
फिर नियम बताएं, हमारे घर में हम एक दूसरे को मारते नहीं हैं, और फिर मिलकर समाधान ढूंढने के लिए कहें।
तुम दोनों को ये खिलौना चाहिए, क्या कोई तरीका है?
बिल्कुल, ये उन्हें बातचीत और समस्या सुलझाने का हुनर सिखाता है,
कॉन्फ्लिक्ट लोजिंग।
और ये सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं, शायद बड़ों के साथ रिश्तों में भी काम आ सकता है।
यकीनन,
ये असल में बेहतर मानवीय संवाद के सिद्धांत हैं, ह्यूमन कम्युनिकेशन स्किल्स।
जैसे
अपने जीवन साथी के साथ असहमति में मैं कथन का उपयोग करना, ऑफिस में किसी सहकर्मी की परेशानी को समझने के लिए पहले उसकी भावना को स्वीकार करना, किसी की तारीफ करते हुए वर्णनात्मक भाषा का इस्तेमाल करना, ये सब इसी किताब के सिद्धांत हैं।
ये हर रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं।
बिल्कुल।
तो इस पूरी चर्चा के बाद मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि बच्चों के साथ एक गहरा, प्यार भरा और सहयोगी रिश्ता बनाना, ये किस्मत की बात नहीं है।
नहीं,
बल्कि ये ऐसे कौशल हैं जिन्हें सीखा जा सकता है और अभ्यास से बेहतर किया जा सकता है। और सच कहूँ तो सजा के इतने सारे रचनात्मक और सम्मानजनक विकल्प जानना, ये मेरे लिए वाकई आंखें खोलने वाला था।
मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनाओं को समझना और स्वीकार करना, ये हर सार्थक संवाद की चाबी है।
की
ये किताब माता पिता को और हर किसी को डांट फटकार और निराशा के चक्र से निकालकर उम्मीद और सशक्तिकरण की ओर ले जाती है।
हाँ, एक उम्मीद मिलती है।
ये दिखाती है कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलकर रिश्तों को बदल सकते हैं। ये कंट्रोल करने से हटकर मार्गदर्शन और पोषण की ओर एक बदलाव है, शिफ्ट फ्रॉम कंट्रोल टू गाइडेंस।
ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। आज हमने जिन तकनीकों और विचारों पर बात की, उनमें से कौन सी एक ऐसी है जिसे कोई अपने रिश्तों में, चाहे बच्चों के साथ हो या बड़ों के साथ, आजमाना चाहेगा और क्यों?
ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं सोचने के लिए। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।